नमस्कार भारत, तारीख 15 दिसंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। आज से संसद का शीतकालीन सत्र सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, बीजेपी बोली हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार।
पिछले दिन मुद्दों से सरकार बार बार भाग रही है।
हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कई मुद्दे आए जिनके ऊपर डिस्कशन हो।
लगातार ऊपर जाती महंगाई दर पर कैसे हो काबू, क्या सुझाव दे रहे हैं अर्थशास्त्री।
फार्मिंग में सब्सिडी हो सकती है और यहाँ पे उसी तरह अर्बन एरियाज में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो तेज कर दें, वहाँ पे सब्सिडी देना शुरू करें।
और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत का आरोप, मध्य पूर्व में संघर्ष की आग भड़का रहा है ईरान।
The Iranian regime's behavior is growing worse.
ईरान ने आरोपों को बताया सऊदी अरब के अपराधों को छुपाने की कोशिश। खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो गुजरात चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका समेत कई अन्य मुद्दों को आज ही सदन में उठाएगा। वहीं सरकार ने कहा है कि करीब 25 बिल लोकसभा में पेश किए जाएंगे, जिनमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी बिल भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वो यमन के विद्रोहियों को मिसाइल मुहैया करा रहा है। निकी हेली ने कहा है कि यमन से हूती विद्रोही इन मिसाइलों को सऊदी अरब पर दाग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान मध्य पूर्व में संघर्ष की आग को हवा दे रहा है। अमरीका के संघीय संचार नियामक ने नेट न्यूट्रलिटी को खत्म करने के पक्ष में अपनी राय जताई है। यदि यह लागू हो जाता है तो ग्राहकों तक कौन सी वेबसाइट किस गति से पहुंचे, यह तय करने का अधिकार बड़ी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी कॉमकॉस्ट और वेरिजोन के पास आ जाएगा। 2 साल पहले बराक ओबामा प्रशासन ने नेट न्यूट्रलिटी का नियम लागू किया था। वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स के सह संस्थापक मिचेल बेकर ने इस फैसले को दुखद बताया है। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि इंटरनेट हर किसी की आधारभूत जरूरत है। ये हर चीज के लिए जरूरी है, स्वास्थ्य से लेकर कारोबार तक सभी सूचनाओं और सामग्री के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसे सिर्फ मुनाफे तक आधारित बनाना हर किसी के लिए बुरा है। ये थे मोजिला फायरफॉक्स के सह संस्थापक मिचेल बेकर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में चल रही सीरिया शांतिवार्ता का ताजा दौर बेनतीजा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि स्टीफन डे मिस्तुरा ने कहा है कि सीरिया की सरकार और विरोधियों ने बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और एक स्वर्णिम मौका गंवा दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत को लेकर सीरियाई सरकार के रुख से वो बेहद निराश हैं। पिछले छह साल से सबसे अधिक बार उत्तर कोरिया के दौरे पर गए संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी जेफरी फेल्टमैन ने उत्तर कोरिया से अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत के रास्ते फिर से खोलने का आग्रह किया है। बीबीसी के साथ खास बातचीत में फेल्टमैन ने कहा कि उत्तर कोरिया को सिर्फ अमरीका को ही अपनी समस्या नहीं मानना चाहिए और उन्हें अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, उत्तर कोरिया को अपनी नीति में बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि वो संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सके। उन्हें ये समझना होगा कि जिस तरह के कदम वो उठा रहे हैं उनका अंजाम क्या हो सकता है। बातचीत नहीं होने से अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। ये थे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी जेफरी फेल्टमैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मनोरंजन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉल्ट डिज्नी मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डो की कंपनी को 3,40,000 करोड़ रुपए में खरीदेगी। सौदे की घोषणा करते हुए डिज्नी ने कहा कि वो 21st सेंचुरी फॉक्स इंटरटेनमेंट में 39% हिस्सा खरीदेगी। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 8वें ग्रह की खोज की है। नासा ने इस ग्रह को कैपलर 90 नाम दिया है। इस ग्रह की खोज मशीन लर्निंग के नाम से जाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के जरिए हुआ है। दक्षिणी फ्रांस में ट्रेन की स्कूल बस से टक्कर हो जाने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। हादसा पेरिस से 850 किलोमीटर दूर हुआ। हादसा इतना भयानक था कि बस 2 हिस्सों में टूट गई। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। चुनावी राजनीति का तरीका लगभग तय सा हो चला है। चुनाव के पहले तक वादे और नतीजे आने तक दावे। गुजरात में भी यही हो रहा है, जरा सुनिए।
गुजरात की जनता हमेशा देश को दिशा दर्शन दिया है, मूल्यनिष्ठ राजनीति को ही पसंद किया है। कभी भी सड़क साफ राजनीति उन्होंने स्वीकारा नहीं है। मोदी जी गुजरात का लाल है, उनको समर्थन भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी पहले जितनी बार हमने सरकार बनाई इससे अधिक सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी।
22 सालों के बाद गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये सरकार जनता की सरकार होगी, जनता के भविष्य की सरकार होगी और पूरे देश में सबसे अच्छी सरकार होगी। मुझे लगता है कि 120 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 2/3 बहुमत हमें मिलेगा।
गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड सीट जीतेगी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी का दावा है कि कांग्रेस 120 सीटें जीत रही है। किसके दावे सही हैं? 18 दिसंबर को साफ होगा। गुजरात की राजनीति पर बात करने के लिए हम सीधे अहमदाबाद चलेंगे, लेकिन आज राजनीतिक नजरिए से गुजरात से ज्यादा निगाहें दिल्ली पर होंगी। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष कई मुद्दे उठाने की तैयारी में है, सरकार ने भी अपनी रणनीति बना ली है। इस सत्र में क्या खास हो सकता है, बता रहे हैं अभिजीत श्रीवास्तव अपनी इस रिपोर्ट में।
गुजरात चुनाव खत्म और अब वक्त आ गया है संसद के शीतकालीन सत्र का। इस सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी और यह सत्र 5 जनवरी तक चलेगा। उम्मीद की जा रही है कि शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो GST, नोटबंदी, अर्थव्यवस्था और किसानों से जुड़े विषय समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। राफेल लड़ाकू विमान खरीद, मंदिर मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेर सकती है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाजपा मुद्दों से भाग रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भक्त चरण दास कहते हैं,
नहीं आप तो देख रहे हैं कि पिछले दिन मुद्दों से सरकार बार बार भाग रही है और इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, आप 2-4 दिन में आप देखिए इन्फ्लेशन का स्थिति क्या है। जैसे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नोटबंदी से GDP 2% नीचे आ जाएगी और ये आज हुआ। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो भयानक हो गया है। सही मुद्दों पर संसद में जरूर बात होगी,
लेकिन कांग्रेस के आरोप से अलग भाजपा का कहना है कि वो इस सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है और चाहती है कि सकारात्मक चर्चा हो। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं,
हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कई मुद्दे आए जिनके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन हम अपोजिशन से ये भी चाहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव वर्क है, जो लॉज और वो बिल्स एक्सेट्रा पास करने हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का है, जो ऑर्डिनेंस है और GST पे है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिल्स हैं जिनको वह डिस्कशन करके पास कर दे और जो जो उनके प्रश्न होंगे उनको पूरी तरह जवाब देंगे।
इस सत्र में जिन अहम बिलों पर चर्चा होने वाली है उनमें एक है बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के डूबे हुए पैसे के सुचारू निवारण के लिए तैयार विधेयक, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। जानकार मानते हैं कि इस पर भी विपक्ष सरकार को घेर सकती है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं,
वो अभी नेसेंट स्टेज में, वो तो स्टैंडिंग कमेटी में है और फाइनली जब स्टैंडिंग कमेटी उसका ड्राफ्ट देगा तब डिस्कशन करेंगे। वो तो एक तरीके से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोई डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं, डिपॉजिट्स हैं, उनको कंफिस्केट करने का या उसको डाइवर्ट करने का उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है।
वो मानते हैं कि इस बिल को लेकर सोशल मीडिया में भ्रम का माहौल फैलाया जा रहा है जो ठीक नहीं है। इससे पहले साल 2016 में 16 दिसंबर को ही शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया था, लेकिन इस बार गुजरात चुनाव के मद्देनजर सत्र को पहले ही कुछ दिन आगे बढ़ा दिया गया और फिर इसमें नए साल से पहले 2 छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन मिश्रा कहते हैं,
छुट्टियां फिर शुरू हो जाएंगी इसी में, बड़े दिन की छुट्टियां इसी में होंगी, फिर उसके बाद बाकी काम भी कुल मिला के 20 दिन का सत्र है। 20 दिन में अभी कितने वर्किंग डे हो गए कहना मुश्किल है और जो मूड अभी मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का, उसमें इस सत्र की प्राथमिकता किसी की नहीं लग रही है, सरकार की भी नहीं लग रही है और विपक्ष भी इसको मुद्दा बना के सिर्फ वहाँ अपना एक कुछ गेन करना चाहता था। इतनी संसद की चिंता इस बार लगता है कि सारे लोग उससे मुक्त हैं, जबकि कई सारे बिल आने हैं या कई सारे मुद्दे ऐसे मुल्क के सामने हैं जिन पे कायदे से चर्चा होनी चाहिए थी।
अरविंद मोहन मिश्रा कहते हैं कि बहुत विपक्षी दबाव में ये कर्म कांड जैसा होकर रह जाएगा, सत्र बुला भी लिया गया और उसके बाद जल्दी जल्दी उसको समाप्त भी किया जाएगा। अभिजीत श्रीवास्तव, नई दिल्ली।
सरकार के लिए चुनौती महंगाई भी पेश कर रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 15 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर है तो थोक महंगाई दर 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। महंगाई पर लोगों का असर और इसे काबू करने के तरीकों को लेकर बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की।
पहली बात तो मैं कहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं ये पूरा जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें सर्विसेज सेक्टर बिल्कुल नहीं होता। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा प्राइस राइज हो रहा है वो इस समय सर्विसेज में हो रहा है, क्योंकि जीएसटी में जो सर्विसेज पे टैक्स है वो सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो मेरा मानना है कि ये करीब 7.5% के आसपास जो प्राइस राइज इस समय चल रहा है, न कि जो ऑफिशियल आंकड़ा है 4.89% का। हमारा असंगठित क्षेत्र है, उनकी जो आमदनी होती है वो इंडेक्स नहीं होती है इससे, होलसेल प्राइस इंडेक्स से। तो सबसे बड़ा असर जो होता है वो असंगठित क्षेत्र पे पड़ता है, तो इसीलिए ये जो महंगाई है 7.5% की वो असंगठित क्षेत्र पे बहुत ज्यादा असर डालती है।
ग्रामीण इलाकों में इसका कुछ असर पड़ेगा?
असल में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे उसका असर तो है ही, इंडेक्स आता है ग्रामीण इलाकों का अलग और अर्बन एरियाज का अलग, तो वहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस समय ग्रामीण इलाकों में थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है बनिस्पत अर्बन एरियाज के। तो शहरी जो इलाके हैं वहाँ पे कुछ थोड़ा सा मॉडरेशन है कम्पेयर टू ग्रामीण इलाके, तो इसलिए वहाँ पे ज्यादा असर है इसका, और असंगठित क्षेत्र वहीं पे केंद्रित है, तो इसलिए कुल मिला के असर काफी है वहाँ पे ज्यादा है। जो दो बड़ी परेशानियां आई हैं अर्थव्यवस्था में, एक तो ये
नोटबंदी
की और दूसरी जीएसटी की, तो उसकी वजह से जो आमदनी है वो असंगठित क्षेत्र में ही ज्यादा असर पड़ा है उसपे। तो एक तरफ आमदनी कम हो गई, दूसरी तरफ दाम जो बढ़ गया तो इसका असर और ज्यादा मैग्निफाई हो गया है। एक जो बात है कि जीएसटी की वजह से जो आम प्राइस राइज है वो सारे चीजों में चली गई है। हमारे जो अर्बन मार्केट है वहां पे तो तेजी से ये सब्जियों के दाम बढ़ गए, लेकिन गाँव में जो फार्मर है उसको उतना प्रोड्यूस का मिल नहीं रहा है और वहां पे उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, तो इसलिए फार्मर एजिटेट कर रहा है कि भाई मेरी आमदनी कम हो गई है। फार्मिंग में सब्सिडी हो सकती है और यहाँ पे उसी तरह अर्बन एरियाज में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो तेज कर दें, वहां पे सब्सिडी देना शुरू करें, जैसे पहले होता था कि जहां आलू की शॉर्टेज होती थी तो सरकार मतलब जगह जगह आलू के बेचने के केंद्र खोल देती थी। जो जनरल प्राइस राइज है उसके लिए मेरा मानना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो जीएसटी है, उसको कम करना चाहिए। तो जब वो कम होगा तो उसका असर होगा। एक और इसमें जो बात साथ में जुड़ी है कि इस समय कच्चा ये तेल है, जो पेट्रोलियम गुड्स हैं, वहां पे अब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने से हमारे देश में भी जो दाम तेज है और वो और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और बढ़ेगा, तो उसके चलते हुए जो मुद्रास्फीति और तेज हो जाएगी। ये मेरा मानना है कि यहाँ पे भी जो अलग से पेट्रोलियम गुड्स पे जो ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी कम की जा सकती है।
महंगाई पर कैसे काबू हो, जानकारी दे रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार। और अब बात गुजरात की। गुजरात में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान 68% से ज्यादा हुआ। पहले दौर में 9 दिसंबर को 89 सीटों पर वोट डाले गए थे, नतीजे 18 दिसंबर को आएंगे। फोन लाइन पर अहमदाबाद से हमारे साथी रजनीश कुमार जुड़े हुए हैं। रजनीश, मतदान खत्म होते ही दावों का दौर शुरू हो गया, एग्जिट पोल के जरिए भी एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में वो वोटर जिनका फैसला ईवीएम में कैद है, वो मतगणना का कितना इंतजार कर रहे हैं या उन्होंने भी एक भावी सरकार की तस्वीर बनाना शुरू कर दिया है?
वास्तविक किसी भी मतदाता के लिए ऐसी तस्वीर खींचना या बनाना आसान नहीं है। हालांकि मीडिया में जब बहस चलती है तो उनका भी ध्यान जाता है, लेकिन दोनों तरफ की जो विपक्ष है और जो सत्ता पक्ष है, जाहिर सी बात है बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल है तो बीजेपी उसको इंडोर्स कर रही है, कांग्रेस के पक्ष में नहीं है तो कांग्रेस इसको खारिज कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि ऐसे एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। ऐसे में मतदाता का कंफ्यूजन बढ़ता है और उसे लगता है कि जब नतीजे फाइनल आए तो उसी पे भरोसा करना ज्यादा ठीक होगा।
और नतीजों में भी ज्यादा वक्त नहीं है, 18 दिसंबर को ही मतगणना हो रही है। रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम श्रोताओं को याद दिला दें कि गुजरात चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोपों का दौर जारी रहा। इसकी शुरुआत चुनाव की तारीख तय करने को लेकर उठे सवालों के साथ हो गई। संसद के सत्र की तारीखें आगे बढ़ाने की बात हो या फिर चुनाव आयोग के सामने शिकायतों का दौर हो, ये सिलसिला लगातार बना रहा। आरोप ये भी लगा कि सरकार अपने दायरे से बाहर जाकर लोकतंत्र के स्वायत्त निकायों में दखल देने की कोशिश कर रही है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे। पूरे मामले पर सुनिए मानसी दास की ये रिपोर्ट।
अक्टूबर में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने फैसला लिया था कि शीतकालीन सत्र 21 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन बाद में इसकी तारीखों को पीछे कर दिया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ऐसा किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भक्त चरण दास कहते हैं,
इतिहास में पहली बार हुआ भारत के इतिहास में कि विंटर सेशन को चुनाव के चलते अपने राज्य में प्रधानमंत्री जी के अपने राज्य में चुनाव कराना है और उनके लिए वो जीवन मरण का बात बन गया और उसी के चलते संसद की गरिमा का हनन किया। संसद की गरिमा को बनाए रखने का प्रथम जिम्मेदारी देश की प्रधानमंत्री का होता है।
लेकिन भाजपा का कहना है कि सरकार पहले ही इसकी सफाई दे चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं,
चुनाव के समय में ये एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र का पर्व होता है। सभी मंत्रियों को और अपने प्रधानमंत्री और सब लोग सोचते हैं कि जनता से संवाद करने का समय है और सेशन चलेगा तो दोनों काम नहीं हो सकते। अपोजिशन के लीडर्स भी वहाँ पे जाते हैं, तो इसलिए इसको सोचते हुए सरकार ने उस सत्र को थोड़ा आगे बढ़ाया था और प्रेसिडेंस है बताया, कई बार ऐसा हो चुका है।
राहुल गांधी के चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं,
देखिए आरोप विपक्ष का काम है, आरोप लगाना वो, और आरोप तो इस वक्त ऐसे लगा रहे हैं कि बिना सोचे समझे लगा रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भक्त चरण दास का कहना है,
राहुल जी के बयान से पहले कितने बार मोदी जी और बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव के समय में इस तरह से बहुत बहकावपूर्ण बातें वो लोग किए हैं। ये चुनाव गुजरात का था।
भक्त चरण दास का आरोप है कि भाजपा ने आखिरी दम तक निर्वाचन आयोग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं, जब हिमाचल प्रदेश के चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई तो गुजरात के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा क्यों नहीं हुई। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन मिश्रा कहते हैं कि ये बात बार बार सामने आ रही है कि भाजपा कार्यपालिका और विधायिका के बीच खींची लकीर को लांघ रही है। उनका कहना है कि एक तरफ भाजपा कांग्रेस के नेता के खिलाफ खड़ी होती है, आरोप लगाती है, तो दूसरी तरफ वोट देने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। साबरमती में वोट डालने के बाद मोदी एक काफिले के साथ वहां से रवाना हुए थे। उनका कहना है,
तो राहुल को सिंगल आउट करना और चुनाव की तारीख में भी सब लोग पहले दिन से देख रहे हैं कि रिजल्ट का गैप दिया गया, हिमाचल का चुनाव डिक्लेयर किया गया और उस बीच इस बात की जगह रखी गई कि गुजरात चुनाव होगा और फिर रिजल्ट साथ निकाल दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद गुजरात चुनाव को टाल के रखा गया क्योंकि उसके बाद कई सारी योजनाएं ऐसी जो चुनाव में फायदा देती।
वो आगे कहते हैं कि ये केवल कार्यपालिका या विधायिका का मुद्दा नहीं है बल्कि न्यायपालिका चुनाव आयोग को भी इसमें शामिल किया गया है।
पहले फेज की वोटिंग के पहले राम मंदिर पे अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी, उसमें फिर कई स्टैंड ऐसे आए जिस अचानक लगा कि राम मंदिर ही सबसे भारी इशू बन गया। ये सारी तैयारियां बता रही हैं कि ये जो हम अब तक मानते रहे हैं कि अलग अलग स्फीयर हैं उनकी परवाह तो सरकार भूलती ही जा रही है।
अरविंद मोहन मिश्रा का कहना है कि हर चीज का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे में हम इसे केवल कार्यपालिका या विधायिका का मुद्दा न माने। मानसी दास, दिल्ली।
चुनाव के दौरान जो सवाल उठे, जो आरोप लगे, उनमें एक आरोप ये भी था, एक कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मशरूम खाकर मोदी जी का रंग बदल गया है, वो गोरे हो गए हैं। हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश ने इस पर एक बड़ा दिलचस्प कार्टून बनाया कि 2015 में विपक्ष के नेता सवाल करते थे कि अच्छे दिन कहाँ हैं, 2016 में सवाल था काला धन कब आएगा और 2017 में सवाल हो गया गोरे कैसे हो गए। अहमदाबाद से रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, चुनाव प्रचार काफ़ी तीखा हुआ, आखिर में ज़्यादातर जो चुनाव प्रचार था उसमें नकारात्मक बातें ही सामने आई, इसी तरह के आरोप सामने आए, लेकिन चुनाव में क्या कोई सकारात्मक पहलू भी आपको नज़र आए? आप लगातार वहां बने हुए थे।
बिल्कुल, वास्तविक कई सकारात्मक चीजें थी जिसे हम कह सकते हैं। पहली बात है कि आप यहाँ जब गुजरात में निकलते थे चुनावी माहौल को देखने, तो जो आप किसी विशेषज्ञ से या विश्लेषक से मिलते थे तो उनका कहना होता था कि पहली बार ऐसा लग रहा है पिछले 22 सालों में कि कोई विपक्ष नाम की एक ताकत है जो सत्ता पक्ष से सवाल कर रही है और लोगों के सामने अपने मुद्दों को और अपने इश्यूज को रख रही है कि मेरा प्लान क्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सारी चीजों को इंडोर्स किया है और उसको संबोधित किया है लोगों का। और दूसरी बात यह है वास्तविक कि इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा है
जी। दोनों दौर में 68% से ज्यादा वोटिंग हुई
जी। अच्छा, आप अगर जाते पोलिंग बूथ पे तो महिलाओं की लंबी कतारें लगी रहती थी जहां लोगों में जोश देखने को मिलता था। ये अलग बात है कि 2012 से कुछ फीसदी कम है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं दिखी है
जी। और नतीजे आने हैं 18 दिसंबर को, और नतीजे चाहे जो भी हो अभी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जैसे साल 2014 में गुजरात के विकास मॉडल को पेश किया गया था, आने वाले जो चुनाव है जिस तरह से गुजरात में ये चुनाव लड़ा गया है, तो अगले विधानसभा चुनाव हो या 2019 का आम चुनाव हो, क्या इस मॉडल को रिपीट करना चाहेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों?
देखिए, बीजेपी के लिए मॉडल अपने आप में काफी विवादित रहा है। 2014 के आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको पेश किया, उसी वक्त कई अर्थशास्त्रियों ने, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल खड़ा किया कि जो मोदी सरकार जिस मॉडल को पेश कर रही है उसमें अपने आप में कितनी खामियां हैं। जैसे वो कहते थे महिलाओं के कुपोषण को लेकर, शिक्षा को लेकर, मिनिमम वेज को लेकर, कई तरह के ऐसे सवाल थे जो कि अन्य राज्यों से गुजरात पिछड़ता हुआ दिखता था। अब एजुकेशन के मामले में गुजरात अभी 18वें नंबर पे है, तो ऐसे कई सवाल थे जो मॉडल अपने आप में वो घिरा हुआ था। और गुजरात में जब उस मॉडल की बात होती है तो इस तरह के कई सवाल एक साथ खड़े किए जाते हैं
जी।
अब आने वाले चुनाव में बीजेपी इस मॉडल को रिपीट करती है, एक गुजरात के चुनावी नतीजे जब 18 तारीख को आ जाएंगे उससे पता चलेगा कि बीजेपी उसको आगे करेगी या पीछे करेगी।
बहुत शुक्रिया रजनीश। और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है। दिनेश जी तैयार हैं अखबारों के साथ।
जी वासिली, जैसे आपको अंदाजा होगा ही लगभग सभी अखबारों ने एग्जिट पोल के नतीजों को अपनी पहली खबर बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है फोरकास्ट बीजेपी टू विन बोथ स्टेट्स। दैनिक भास्कर,
यानी हिमाचल की भी बात हो रही है गुजरात के साथ साथ
जी। दैनिक भास्कर ने 5 एजेंसियों का औसत निकाला है और लिखता है कि गुजरात में भाजपा 100 के पार, कांग्रेस 70 के नीचे
जी।
एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि गुजरात में छठी बार भाजपा सत्ता में लौट रही है, वहीं हिमाचल में भी भाजपा कांग्रेस को सत्ता से हटाने जा रही है। हालांकि नतीजे 18 को आने वाले हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या होता है
जी।
हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर कांग्रेस के हमले को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर के मुताबिक कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी की कठपुतली बताया है।
बीजेपी ने भी कल इस पर पलटवार किया था और याद दिलाया था कि कौन कौन से चुनाव आयुक्त थे जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए
जी। जापान के एक पर्यटक के साथ वाराणसी में लूट की खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुर्खी बनाया है। खबर के मुताबिक एक व्यक्ति ने गाइड बनकर जापानी पर्यटक के साथ लूटपाट की। वासिल जी, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से इस तरह की खबरें कई बार आपने देखी होंगी कि विदेशी सैलानियों के साथ मारपीट और लूट हुई है। क्रिकेटरों की सैलरी हो सकती है दोगुनी, इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर छापा है। क्रिकेटरों को अगले सत्र से ही बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है। राजनेताओं के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। खबर के मुताबिक देश भर में ऐसी 12 विशेष अदालतें गठित होंगी
जी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमरीका ने ईरान पर हूती विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया है। वहीं ईरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका यमन में जारी संघर्ष में सऊदी अरब के आरोपों को छुपाना चाहता है। ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं दिनेश उप्रेती।
डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनातनी का नया दौर शुरू हो गया था और अब दोनों देशों के बीच दिनों दिन तल्खी बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने आरोप लगाया है कि ईरान मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को हवा दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले दिनों यमन से जो मिसाइलें सऊदी अरब पर दागी गईं वो हूती विद्रोहियों को ईरान से मिली थीं। निकी हेली ने वॉशिंगटन में संवाददाताओं को बीते महीने रियाद एयरपोर्ट के पास गिरी एक बैलिस्टिक मिसाइल के अवशेषों को दिखाया और कहा कि इस पर मेड इन ईरान के स्टिकर भी हो सकते थे। उन्होंने कहा कि वो ये सूचनाएं इसलिए सामने ला रही हैं ताकि पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखा जाए। निकी हेली ने कहा कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहता है।
You will see us build a coalition to really push back against Iran and what they're doing. It will be
ईरान जो कुछ कह रहा है उसे रोकने के लिए हम गठजोड़ तैयार करेंगे। ये गठजोड़ सुरक्षा परिषद के साथ होगा और हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन करने के लिए हम ईरान के खिलाफ क्या कर सकते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताएंगे कि ईरान के ये कदम कितने खतरनाक हो सकते हैं। निकी हेली के इन आरोपों का ईरान ने उतनी ही सख्ती से जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा कि ये कथित सबूत इसलिए गढ़े गए हैं ताकि अमेरिका अपने एजेंडे पर आगे बढ़ सके। ईरानी मिशन की प्रवक्ता की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि ये आरोप यमन में अमेरिका की मिलीभगत से सऊदी अरब के युद्ध अपराधों को ढकने की कोशिश है। हालांकि निकी हेली ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि ये मिसाइलें ईरान से ही आई हैं, लेकिन कहा कि ईरान की सरकार का तौर तरीका बद से बदतर होता जा रहा है।
The Iranian regime's behavior is growing worse. The nuclear deal has done nothing to moderate the regime's
ईरान की सरकार का रवैया लगातार खराब हो रहा है। ईरान के साथ परमाणु समझौते का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे क्षेत्रों में उसके दखल की अनदेखी करें। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से खतरनाक मिलिशिया और आतंकी समूहों को मदद बढ़ती जा रही है। पूरे क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंच रही हैं। मध्य पूर्व में जहां देखो वहां आतंकवादी समूहों पर ईरान की छाप दिखती है। निकी हेली के ईरान पर ये आरोप ट्रंप प्रशासन के ईरान के खिलाफ सख्त होते रुख की ही कड़ी हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले और व्हाइट हाउस संभालने के बाद भी ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते को सबसे बुरा समझौता करार देते रहे हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि मध्य पूर्व के बहाने ही सही अमेरिका ईरान पर नकेल कसने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पर्थ के मैदान पर, जहां आज एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करते हुए 4 विकेट गंवाकर 305 रन बनाए थे और आज इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे डेविड मैलन और जॉनी बेयरस्टो। लेकिन पर्थ में चल रहे इस मुकाबले को लेकर फिक्सिंग के आरोप भी लगे। ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया था कि भारतीय बुकी ने इस मैच को फिक्स किए जाने के लिए ऑफर दिया था। द सन ने अपनी रिपोर्ट में पर्थ में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में स्पॉट फिक्सिंग की बात कही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी समिति के महाप्रबंधक एलेक्स मार्शल ने कहा कि अखबार की रिपोर्ट और आईसीसी की पिछली जांच के आधार पर इस मामले में किसी तरह के सबूत नहीं मिले हैं। इस तरह के आरोपों का कोई आधार और सबूत नहीं है। और बैडमिंटन के कोर्ट से एक अच्छी खबर है। दुबई में खेली जा रही दुबई सुपर सीरीज में पीवी सिंधु ने अपने ग्रुप के दूसरे राउंड का भी मुकाबला जीत लिया है। उन्होंने जापान की खिलाड़ी सायाका सातो को 21-13, 21-12 से मात दे दी। पीवी सिंधु का ये मुकाबला कल शाम को खेला गया था।
भारत और पाकिस्तान के बीच सरकारी स्तर पर बातचीत बंद है। हाल ही में कांग्रेस नेता मणिशंकर के अय्यर के घर पाकिस्तान के कुछ अधिकारी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए थे। इसके बाद बैठक में मौजूद रहे पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा था कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रैक टू डिप्लोमेसी में लंबे समय से जुड़े रहे हैं और दोनों देशों के बीच सुलह के पक्षकार हैं। आखिर ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है और क्या इससे भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। वक्त विदा लेने का हो रहा है, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वो यमन के विद्रोहियों को मिसाइल मुहैया करा रहा है। अमेरिका के संघीय संचार नियामक ने नेट न्यूट्रलिटी को खत्म करने के पक्ष में अपनी राय जताई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में चल रही सीरिया शांतिवार्ता का ताजा दौर बेनतीजा रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया दीपक जसरोटिया ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आप रुक कर सकते हैं bbchindi.com को। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।